नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों ओला और उबर को अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। CCPA ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने PTI भाषा से कहा, हमने ओला और उबर दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पिछले एक साल से कैब सेवा प्रदाताओं के खिलाफ बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों और अन्य अनुचित व्यापार आचरण से संबंधित है। सरकार ने बीते 10 मई को कैब प्रदाताओं के साथ हुई बैठक में चेतावनी दी थी कि अगर वे अपनी व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का समाधान नहीं करती तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने नोटिस का जवाब देने के लिए ओला और उबर को 15 दिन का समय दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजारों में संभावित गिरोहबंदी को लेकर शुक्रवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि जिंसों की आपूर्ति में कमी के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 13वें वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर सीतारमण ने ये भी कहा कि नियामक को विलयों और अधिग्रहणों के बारे में गहरी समझ होना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा, गिरोहबंदी की चुनौती से निपटना होगा। जिंसों की बढ़ती कीमतों के पीछे विभिन्न कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कमी के हालात के पीछे कारणों को भी देखने की जरूरत है। उन्होंने ये टिप्पणियां ऐसे समय में की हैं जब मुद्रास्फीति आसमान छू रही है। सीतारमण के पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने कहा कि CCI के साथ साथ कंपनियों को भी संवेदनशील बनने की जरूरत है। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा ने कहा, CCI ने प्रतिस्पर्धा रोधी मामलों से निपटने के लिए अहम हस्तक्षेप किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति की सिफारिशों को भी देखा जा रहा है। वहीं प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधनों पर भी विचार चल रहा है। CCI के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने इस कार्यक्रम में कहा कि नियामक ने बीते 13 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में न्याय शास्त्र का एक मजबूत निकाय स्थापित किया है। न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी फिच ने कर्ज में डूबे श्रीलंका की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर रिस्ट्रिक्टेड डिफॉल्ट श्रेणी में कर दिया, जिसका मतलब है कि देश चूक की कगार पर है। दरअसल देश 30 दिन की रियासत अवधि के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड का भुगतान करने में विफल रहा है। इससे पहले केंद्रीय बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरसिंघे ने बृहस्पतिवार को यह स्वीकार किया था कि श्रीलंका अपने कर्ज का भुगतान इनका पुनर्गठन होने तक नहीं कर सकेगा। बॉन्ड का भुगतान 18 अप्रैल तक देय था और इसकी राशि $7.8 करोड़ है। इसके भुगतान के लिए 30 दिन की रियायत अवधि भी बुधवार को समाप्त हो गई। इससे पहले 12 अप्रैल को फिच ने श्रीलंका की रेटिंग घटाकर सी कर दी थी। रेटिंग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को कहा था श्रीलंका की विदेशी मुद्रा मुद्दे से संबंधित रेटिंग को सी से घटाकर डी कर दिया है। ऐसा वरिष्ठ असुरक्षित विदेशी मुद्रा बॉन्ड के मामले में चूक को देखते हुए किया गया है। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड, वाणिज्यिक बैंक ऋण, एक्जिम बैंक कर्ज और द्विपक्षीय कर्ज का भुगतान पहले ही निलंबित कर दिया है। देश को इस वर्ष $10.634 करोड़ का भुगतान करना है, लेकिन अप्रैल तक वह केवल $1.24 करोड़ का ही भुगतान कर पाया। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें रतन इंडिया फाइनेंस को संयुक्त उद्यम के साझेदार विपिन काबरा को 6 जुलाई तक मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। NCLT की पीठ ने रतन इंडिया फाइनेंस को विपिन काबरा को अपना CFO नियुक्त करने के निर्देश 29 मार्च को दिया था। NCLT ने संयुक्त उद्यम साझेदार LSF 10 रोज इन्वेस्टमेंट्स की अपील पर यह आदेश दिया था। LSF 10 रोज इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका स्थित निजी इक्विटी फर्म लोन स्टार फंड्स की सहायक कंपनी है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी रतन इंडिया फाइनेंस में उसकी 50% हिस्सेदारी है। इस आदेश को राजीव रतन, अंजलि नाशियार और हेमलिन ट्रस्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT में चुनौती दी। NCLT की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय करते हुए अगली सुनवाई तक 29 मार्च 2022 को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पीएम किसान जैसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2024 तक तीन चरणों में फोर्टिफाइड चावल का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से चावल को पोषक तत्वों से संवर्धित करने की प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन कहलाती है। यह अनीमिया की चुनौती को दूर करने के लिए एक प्रभावी निवारक और लागत प्रभावी रणनीति है। सिंगापुर के फैशन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिलेंगो ने शुक्रवार को बताया कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के बाद भारतीय मूल की सह संस्थापक एवं CEO अंकिती बोस को बर्खास्त कर दिया गया है। कंपनी के खातों में कथित विसंगतियों की शिकायतों के बाद 31 मार्च को बोस को निलंबित किया गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।